जिम्मेदारी उसे नहीं कहते जिसे पूरा नहीं कर सकते, जिम्मेदारी वही है जिसे पूरा कर सकते हैं। तो जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं, जरूरत पूरी हो सकती है, ये जीवन कर सकते हैं। यदि हम अपने इस सत्य में अविचल आस्था करें, विश्वास करें अथवा उसे स्वीकार करें कि मेरी मांग पूरी हो सकती है और मैं जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ। अब आप सोचिए कि आपकी अपनी मांग क्या है। क्या आपको स्वाधीनता नहीं चाहिए? क्या राय क्या है? मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको स्वाधीनता नहीं चाहिए? चाहिए। अगर एक बात बताइए, जिसे किसी और के द्वारा प्राप्त किया जाए उसको स्वाधीनता कहते हैं कि पराधीनता? आपको चाहिए स्वाधीनता। तो उसे ये सिद्ध हुआ कि आपको किसी और की सहायता तो अपेक्षित है नहीं, स्वाधीनता ये नहीं। अब क्या करूं? अब स्वाधीन होने के लिए आप अपने साथ क्या करोगे, अपने द्वारा क्या करोगे? साफ मालूम होता है कि यदि हम स्वाधीन होना चाहते हैं तो हमें पराश्रय से और परश्रम से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि पराश्रय को रखते हुए हम स्वाधीन हो नहीं सकते और पराश्रय के बिना परश्रम कर नहीं सकते। पराश्रय के बिना आप क्या कर सकते बताना सर? कुछ कर सकते हैं पराश्रय के बिना? बोलो भाई।
नहीं कर सकते।
एक अकेले अकेले आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, कई एक है। हाँ भाई लोग बताओ क्या रहा है आपकी? पराश्रय के बिना आप क्या कर सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, कर क्या सकते हैं? नहीं ले सकते। तो स्वाधीन होने के लिए एक तो पराश्रय छोड़ना होगा और एक परश्रम छोड़ना होगा। अब हम पराश्रय और परश्रम क्यों नहीं छोड़ते, इस पर सोचो। तन का आश्रय, धन का आश्रय, मन का आश्रय, बल का आश्रय, योग्यता का आश्रय, परिवार का आश्रय, समाज का आश्रय, संसार का आश्रय हम क्यों नहीं छोड़ते? इसलिए कि हम जो जानते हैं सो नहीं मानते हैं। देखिए पराश्रय कैसे किसको है? जिसके साथ आप सदैव नहीं रह सकते हैं और जो आपके साथ सदैव नहीं रहता उसी को पराश्रय कहते हैं। तो पराश्रय हमसे छूटेगा तो तुम रह ही नहीं सकते, क्या रहे? यानी कोई उपाय ऐसा नहीं है जिससे पर का आश्रय न छूटे, क्यों? वो सदैव हमारे साथ रह ही नहीं सकता, हम उसके साथ रह ही नहीं सकते, छूटेगा जरूर। लेकिन हमें जब तक पर के साथ रहना है तब तक पर की सेवा करना है कि उसके द्वारा अपने सुख का भोग करना है, ये सोचने की बात है। यदि हमें द्वारा सुख का भोग करना है तो हम कभी भी पराधीनता से, अभाव से मुक्त नहीं हो सकते। और यदि हमें पर के द्वारा पर की सेवा करना है तब हम पराश्रय से मुक्त हो सकते हैं। तो करने के क्षेत्र में तो केवल सेवा करने की बात आई, अब आप कहेंगे सेवा क्या है, सेवा क्या तत्व है। इस पर विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि सद्भाव और सहयोग यही सेवा है। सद्भाव सभी के प्रति हो, सहयोग यथाशक्ति हो। तो जिनके साथ आप रहते हैं अथवा जो आपके साथ रहते हैं उनके प्रति सद्भाव रखने में आपको क्या तकलीफ मालूम होती है, क्या कठिनाई मालूम होती है, और यथाशक्ति सहयोग देने में क्या कठिनाई मालूम होती है, क्या राय? तो मतलब भाई बोल दो बोल दो बोलो भैया बिहार में बबुआ कहते हैं, बबुआ बोल लो, बबुआ बोल लो। जिनके साथ आप रहते हैं उनके प्रति आपके हृदय में सद्भाव रहे और यथाशक्ति सहयोग रहे, इसमें आपको क्या कठिनाई मालूम होती है? मालूम होती है कठिनाई जरूर मालूम होती है, करते जरूर आप मैं बताऊं अभी आप देखना चाहते हैं। कठिनाई आपको इसलिए मालूम होती है कि आपने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि मुझे जो चाहिए वो मुझ में है। आप ये सोचते हैं मुझे जो चाहिए वो संसार से मिल जाए, केवल ये भूल और कुछ नहीं। और जानते हैं ये कि आप संसार रह नहीं सकते, संसार आप कर रह नहीं सकते, रह नहीं सकता, फिर भी आप ये सोचते हैं मुझे जो चाहिए तो संसार से मिल जाएगा। यही मूल भूल है। देखिए ज्ञान तो आपको ऐसा है कि आप संसार के साथ नहीं रह सकते, संसार आपके साथ नहीं रह सकता, और आप मान क्या बैठे हैं कि आज मेरे पास धन कम है, यदि अधिक धन होता तो मैं स्वाधीन हो जाता, और इस बात को भूल जाते हैं कि धन के अधीन हो जाता है कि स्वाधीन हो जाता है। देखिए आज मैं सोचूं कि आंखें होती तो मैं स्वाधीन हो जाता, ये क्यों सोचता, ये क्यों नहीं सोचता कि आंखें होती तो मैं आंखों के अधीन हो जाता, स्वाधीन कैसे हो जाता? लेकिन बहुत से लोग सोचते होंगे जहां पर संपत्ति होती तब स्वाधीन हो जाते, तो संपत्ति से स्वाधीन होते हैं कि संपत्ति के अधीन होते हैं? योग्यता से स्वाधीन होते हैं कि योग्यता के अधीन होते हैं? सामर्थ्य से स्वाधीन होते हैं कि सामर्थ्य के अधीन होते हैं? क्या राय? वस्तु से स्वाधीन होते हैं कि वस्तु के अधीन होते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के से स्वाधीन होते हैं कि व्यक्ति के अधीन होते हैं? क्या राय बोलो, स्वाधीन तो नहीं होते। फिर माने क्या बैठे कि अगर अच्छा साथी मिल जाएगा तो बहुत ही आनंद आएगा, अगर अच्छी वस्तु मिल जाएगी तो बड़ा ही मजा आएगा, अगर हमको योग्यता और प्राप्त हो जाएगी तो और आनंद आएगा, ये सोचते रहते हैं। जानते हैं कुछ और मानते हैं कुछ। अगर हम अपनी भाषा में बोले कि हम क्यों नहीं स्वाधीन हो पाते कि जो जानते हैं सो मानते नहीं है, जो जानते हैं सो नहीं मानते। अरे आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि 24 घंटे में एक एक दो दो मिनट के लिए आप अगर दो चार बार दस पांच बार शांत होकर पराश्रय छोड़ देते और उसका परिणाम यदि स्वाधीनता न होता तो आप कभी भी पराश्रय न छोड़ते। अरे 24 घंटे में एक दो मिनट के लिए पराश्रय छोड़ने का स्वभाव आप बनाइए। फिर देखिए कि आपको अपने में अपना जीवन अथवा जीवन धन मिलते हैं या नहीं। ईश्वरवादियों का ईश्वर, अध्यात्मवादियों का आत्मा यदि अपने में न मिलता तब आप इस सत्य को कभी नहीं स्वीकार करते। पर आप थोड़ी देर के लिए भी पराश्रय प्रश्न से रहित होकर स्वाधीन होना पसंद क्यों नहीं करते? स्वभाव से तो आपकी मांग है कि मुझे स्वाधीनता चाहिए, पर स्वाधीन होना थोड़ी देर के लिए पसंद कर लीजिए, तो क्या होता? न तो मिले हुए से ममता रहती और न देखे हुए की कामना रहती। अरे भाई, हम जो पराधीन बने बैठे हैं तो क्या मिले हुए की ममता के बिना बने बैठे हैं? क्या राय? अच्छा, और अप्राप्त के बिना कामना के पराधीन बने बैठे हैं? कामना बैठे और तो पराधीन बनने का कारण नहीं है। तो क्या हम थोड़ी देर के लिए निर्मम और निष्काम होकर देव नहीं अनुभव नहीं कर सकते क्या जीवन है? क्या राय? अगर थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए 24 घंटे में आप 18 घंटे 20 घंटे पराश्रय प्रश्न में लगे रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 2-4 घंटे का समय, घंटे 2 घंटे का समय थोड़ी थोड़ी देर बाद विश्राम और हरियाश्रय में तो लगाओ। अगर बिना आश्रय के नहीं रह सकते तो हरियाश्रय को स्वीकार करो, और बिना करे नहीं रह सकते तो सेवा करो। क्या राय? लेकिन न तो आप हरियाश्रय को स्वीकार करते हैं, न आप सेवा करते हैं, और करे बिना तो क्या करते हैं? भोग करते हैं और पराश्रय स्वीकार करते हैं। क्या राय? भोग करते हैं और पराश्रय को स्वीकार करते हैं। लोग आपको पसंद नहीं है, हर यात्रा आपको पसंद नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी लज्जाजनक और दुख की बात क्या है मेरे भाई, कि पसंद करें भोग और चर्चा करें योग की। क्या राय? आप लोग योग की चर्चा करते हैं? पसंद करें ये संसार और चर्चा करें परमात्मा की। ये धोखेबाजी जो हम अपने साथ करते हैं, यही कारण है कि आज हम मौजूद परमात्मा से दूर हो गए और जिस संसार का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है उसके पीछे दिन रात दौड़े चले जा रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? जो है नहीं, किसको छोड़े बैठे हैं? जो अपने में मौजूद है। हम जब तीसरे दर्जे पढ़ते थे ना, तो उत्तर प्रदेश में जनरल रीडर के नाम से किताब पढ़ाई जाती थी हिंदी की। उस किताब में मारीच बंध की कथा लिखी हुई थी, रामचंद्र मानस का हिस्सा था। वो कथा किस प्रकार है कि जब रावण की भगिनी सुपर्णखा की नाक कट गई, लखनलाल ने काट दी, तब उसने जाकर रावण से शिकायत की कि दो तपस्वी आए हैं, बड़े सुंदर हैं, पर क्या बताऊं भैया, उनके साथ एक बड़ी सुंदर नारी है, तुम उसको ले लो तो अच्छा हो। ऐसी सलाह दी मैंने। रावण ने मारी नाम का राक्षस बुलाया, उसने कहा देखो तुम जाकर ऐसा खेल रचो कि जिससे वो तपस्वी उस सुकुमारी नारी को छोड़कर अलग हो जाए और मैं उसको उठा लाऊं। ये एक योजना बनी रावण की। कथा में रावण की योजना है, जीवन में अहम भाव की योजना है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, जो दिखाई देता है उसमें से। तो जब योजना बन गई तो उस मारीच ने एक माया रूपी मृग का रूप धारण किया। अब इसको तो उपन्यास की तरह कल्पना मानो सत्य मानो से कोई मतलब नहीं, ये तो आपकी अपनी रुचि है, हम जैसा हम माने तो मैं मानो, लेकिन माया रूपी कपट बन गया। कनक दे मन विचित बनाई, सोने के शरीर है, मणियों से घृत है, बड़ा सुंदर हिरण है। इधर महारानी जी ने, महारानी सीता ने उस हिरण को जो देखा, सुंदर हिरण को, तो प्रभु से कहा, आनव चर्म कहत जयदेवी, जयदेवी कहती है तुम्हें चमड़ा मिलने लगे, बड़ा सुंदर है, बड़ा ही सुंदर है। पुरुष से नहीं कहते जो स्त्री की मांग पूरी करने के लिए प्रयत्न कर पाए, नहीं कर पाए बात अलग है, पुरुष का धर्म ही है स्त्री की मांग को पूरा करे। यद्यपि जब भगवान राम ने कहा था वन चलते समय अयोध्या में, क्या कहा था, ये कहा था कुछ दिन पिता के घर रहो, कुछ दिन यहाँ रहो, तुम्हारे रहने से मेरी माता पिता को बड़ा संतोष होगा। तब महारानी जी ने कहा कि तन प्राण के केवल प्राण, के तो तन और प्राण दोनों आपके साथ जाएंगे, नहीं तो केवल प्राण जाएंगे, ऐसा चले आए। तो सब कुछ छोड़ करके जिस का साथ उन्होंने किया था उसके साथ रहते हुए जो नहीं है उसकी कामना पैदा कर ली। सोने का मुझे तो है ही नहीं, ये भाषा आपके समझ आती है, कामना पैदा कर ली, जो हमें बचपन में पढ़ा था ना याद है। तो और उधर क्या हुआ, उस मायावी हिरण ने, उस मारीच ने श्री रघुनाथ जी को पसंद कर लिया। अब देखिए इन्होंने मृग को पसंद किया, उन्होंने रघुनाथ जी को पसंद किया। वो रावण के का साथी है, राम को धोखा देने आया है, ये राम की प्रिया है, इतने घनिष्ठ संबंध है, समझ गया, ये भाषा ठीक समझ आएगी, वे तो राम की प्रिया है और वो रावण का साथी है, लेकिन उसको क्या भली बात सूझ गई कि उसने प्रभु को पसंद कर लिया, और इन्हें क्या उल्टी बात सूझ गई कि उन्होंने मृग को पसंद कर लिया। हमको ऊंचा पर याद है बचपन की पढ़ी हुई, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यह दुध प्रभु गयो ले दूरी, कभी छिप जाए कभी उजार हो जाए, भगवान को दूर ले गया, तब तक राम कठिन शर मारा, तीर मार दिया, धरन परे कर घोर चिगारा, बड़े दूर से चिल्लाया, क्या प्रथम ले लक्ष्मण कर नामा, और पाछे सुमिर से मन में हाय लखन, हाय लखन कहके चिल्लाया, भक्त की शरण ली उसने पहले। और राम को स्मरण कर लिया, उनको जो देखा था ना उनको स्मरण कर लिया। ये आवाज महारानी सीता के कान में गई तो उन्होंने लखनलाल से कहा, जाओ जाओ तुम्हारे भाई पर कोई आपत्ति आई है, जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लखनलाल ने कहा, माँ जीत को सके अजय रघुराई, रघुराई अजय है, उन पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती, आप अधीर न हो। तो गोस्वामी ने बड़ी मर्यादा के साथ एक बात लिखा, मरम वचन सीता तब बोला, मरम वचन माने हृदय को दिखाने वाला है, और हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हर की प्रेरणा से लीला करना था, मन डोल गया, तो एक लकीर खींचिए कि तुम इसके बाहर मत जाना। इधर रावण ने बड़ा सुंदर यति का वेश बनाया, मामूली वेश नहीं यति का, कहा भिक्षा दो हमको, निकल लो नहीं इस लकीर के बाहर आ जाओ। तो देखो प्रभु की महिमा भूली, जो नहीं था उसको पसंद किया, जो गलती है, और की वाणी का अनादर किया और भक्त की मर्यादा को तोड़ा, कितनी गलतियां हुई कि नहीं हुई जी? हुई ना? आप लोग में इतनी हिम्मत है, कितनी गलती करने पर ही उन्हें पत्नी को प्यार करो? लेकिन राम ने, राम की हिम्मत है, रावण ने उसको छोड़ा लिया। उधर से दोनों भाई आए, सुना देखा, राम हाय सीते हाय सीते करके व्याकुल हो गए।
कामिन को दीनता दिखाई,
अमेरा जवानों को बिल्कुल लड़ाई, वो तो अच्छे अच्छे अर्थ ले लेते भक्ता, वो हमसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल इतनी बात से मतलब है कि जो देखे हुए संसार को पसंद करता है और जो सुने हुए परमात्मा को पसंद नहीं करता जी, उसकी क्या दशा होती है? एक दशा होती है कि अपने प्राणनाम से राम की प्रिया राम से अलग हो गई, यद्यप राम का प्रेम नहीं छोड़ा उसने, राम का संबंध नहीं तोड़ा, ये अलग तो हो गई नहीं। और उधर प्रभु ने क्या किया, अंतर प्रेम तास पहचान और मुनि दुर्लभ गति दीन सुजान, मुनियों को जो गति दुर्लभ थी वो मारीच को प्राप्त हो गई। इस कथा से, इस इतिहास से क्या सिद्ध हुआ कि जिसने देखे उनको पसंद किया वो धोखा खा गया और जिसने सुने हुए प्रभु को पसंद किया वो सब कुछ पा गया, ये इसका अर्थ निकला। अब आप देखिए, विचार करके देखिए, हम लोग रोज क्या करते हैं? ये भी करते हैं, देखे हुए शरीर को पसंद करते हैं, सुने हुए आत्मा पर विचार नहीं करते हैं, देखे हुए जगत को पसंद करते हैं, सुने हुए परमात्मा को पसंद नहीं करते हैं, और क्या करते हैं जी? क्या है, समझ में आ गया? तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि परमात्मा उसे नहीं कहते जो हाजिर नाजिर ना हो, अभी ना हो, अभी हो, अपने में हो, अपना हो, समर्थ हो, अद्वितीय हो, उसे परमात्मा कहते हैं। एक ही है, समर्थ है, अपना है, अपने में है, अभी है। तो जो अपने में है उसे हम अपना नहीं मानते और जो दिखाई देता है उसी में ममता करते हैं, उसी की कामना करते हैं। परिणाम क्या होता है कि मौजूद परमात्मा से विमुख हो जाते हैं और भोग के कारण मोह में आबद्ध हो जाते हैं। तो यह जीवन का जो सत्य है हमारे आपके सामने कि वेदवाणी से, गुरुवाणी से, भक्तवाणी से हमने आपने भगवान की महिमा सुनी है। एक तो नई घटना वो सुनाते हैं, ये तो प्राचीन कथा सुनाई। एक कोई आदमी अपनी भूल से बहुत दुखी था, उससे कोई अनिश्चित काम बन गया, उससे दुखी हो गया और ये सोच रहा था कि अब मुझको खुदकुशी करनी चाहिए और कोई उपाय नहीं है, मैं इस दुख को लेकर जी नहीं सकता। इत्तेफाक की बात, ये सच्ची घटना है कि ये संत से मिलने के लिए चला गया, किसी के कहने से अनायास बैठ गया, वहां बैठा था संत के पास, संत किसी और से बात कर रहे थे और ये कहते थे कि भैया देखो, भक्त वत्सलता के नाते भगवान भक्तों को मिलते हैं, लेकिन भैया पतित पावन के नाते प्रभु पतित को भी मिलते हैं। इसका क्या हुआ, सभी को मिलते हैं, तो जो सभी को मिलते हैं उससे मेरा नाम कट जाएगा क्या? क्या रहा है जी? महाराज वो खुदकशी करना छोड़ दिया उसने और प्रभु का आश्रय ले लिया और आनंद विभोर हो गया। कि मैं आज के लिए घटना सुना रहा हूं आपको, तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, परमात्मा की महिमा नहीं घट गई है, वो कहीं हमसे दूर नहीं हो गए हैं, न उनकी महिमा घट गई है, न वो हमसे दूर हो गए हैं, वे सतत हमें देख रहे हैं, हमारी आवश्यकता को जानते हैं, पूरी करने के लिए तत्पर हैं, पर हम उन्हें आज अपना मानने के लिए राजी नहीं है, उनकी आवश्यकता अनुभव करने के लिए राजी नहीं है। दो ही तो बातें थी, उनको अपना मानते और उनकी आवश्यकता अनुभव करते। तो हमारी भूल से उत्पन्न हुआ जो काम है वो नाश हो जाता, काम नाश होने से संसार का संबंध टूट जाता, संसार का संबंध टूटने से हमारे और परमात्मा के बीच में जो दूरी मालूम होती थी, जो भेद मालूम होता था, जो भिन्नता मालूम होती थी वो मिट जाती और हम भोग मोह आसक्ति से मुक्त होकर योग बोध प्रेम से अभिमान करते। भोग मोह आसक्ति से मुक्त हो जाते और योग बोध प्रेम से अभिन्न हो जाते। केवल परमात्मा को अपना मानने से और उनकी आवश्यकता अनुभव करने से। अब आप विचार करके देखो, एक तो ये विधान कि भाई अपना मानो और आवश्यकता अनुभव करो और प्राप्त हो जाए, और दूसरी ओर अपना भी मानो, आवश्यकता भी अनुभव करो और प्रयास भी करो, तब भी मिल भी जाए ना भी मिल जाए, अब मिलकर भी चल जाए। संसार की उपलब्धि में क्या केवल जरूरत महसूस करने मात्र संसार मिल जाता है क्या? उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है क्या? बोलो, करना पड़ता है। और फिर भी जितना चाहिए जैसा चाहिए वैसा मिलता है क्या? और मिलकर भी सदैव रहता है क्या? तो एक ओर हम इतने उदार बने बैठे हैं कि मिलता भी नहीं है, सदैव रहता भी नहीं है और श्रम भी करना पड़ता है और उस फिर भी उसको पसंद करते हैं, और दूसरी ओर केवल 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 आवश्यकता अनुभव करना है, पसंद भर करना है और मिल सकता है, उससे हम निराश हो गए हैं। और जो आज तक मिला नहीं, कभी मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। यही हमारा पागलपन है, यही हमारी भूल है। मानव शासन की प्रणाली में साधन नहीं सिखाया जाता, भूल मिटाने की प्रेरणा दी जाती है। हम परमात्मा, हमारी क्या भूल है? जो हमें मिल ही नहीं सकता उसको हम पसंद करते हैं, उसकी कामना करते हैं, और जो मिल सकता है उसको हम पसंद नहीं करते, उसकी हम आवश्यकता अनुभव नहीं करते। तो आपका प्रसाद कितना है, आपकी कोशिश कितनी है, केवल आप किसी भी प्रभु विश्वासी की वाणी पर विश्वास करके आप परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करें, परमात्मा के महत्व को स्वीकार करें। वो हैं और वे वहां महामहिम है, उनकी महिमा का कोई बारा पार नहीं है। ये आपका पुरुषार्थ है, ये आपका प्रयास है। परमात्मा है और महामहिम है, परम सुहृदय है, करुणा सागर है, पतित पावन है, दीन बंधु है, असरण शरण है, यानी इसकी महिमा का बारा पार नहीं है। और हमारी समझ से दो ही तीन बातें हमें ज्यादा अच्छी लगती है, समर्थ है और सभी का होने से अपना है और सदैव होने से भी है। समर्थ है, अपना है, अभी है। अब जिसका, जब आप इस बात को मान लेंगे, मान लें कि समर्थ परमात्मा अपना है और अभी है, तो उसकी विस्मृति हो जाएगी आपको जी? क्या अखंड स्मृति जागृत नहीं होगी? क्या अगाध प्रियता का उदय नहीं होगा? सोचो सही, अखंड। देखिए, आप लोग भजन करते हैं वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, तन के द्वारा, गाते हैं, बजाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अपने द्वारा भगवान को अपना क्यों नहीं मानते? उनकी आवश्यकता अनुभव क्यों नहीं करते? उनके होकर क्यों नहीं रहते? इतना ही तो आपको करना था, अपना मानना था, उनका होकर रहना था, उनकी आवश्यकता अनुभव करना था। इसके लिए तो मन की जरूरत, न तन की जरूरत, न प्राण की जरूरत, न बुद्धि की जरूरत, न योग्यता की, न सामर्थ्य की, न वस्तु की, आप स्वयं अपने ही द्वारा उन्हें अपना मान सकते थे, उनकी आवश्यकता भी अनुभव कर सकते थे, उनकी महिमा भी स्वीकार कर सकते थे कि नहीं कर सकते जी? कर सकते थे। तो जो आप अपने द्वारा कर सकते हैं उसको तो आप करते नहीं, और तन के द्वारा जो कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। अगर तन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती तो आज वैज्ञानिक युग में वे सभी काम यंत्र के द्वारा होते हैं जो तन के द्वारा आप करते हैं, होते हैं कि नहीं जी? तब तो आजकल के वैज्ञानिक परमात्मा की प्राप्ति का भी मशीन बना देते और बटाला के व्यापारी वर्ग उसकी कंपनी ले लेते और आप लोग खरीद लेते। पर प्रभु की ऐसी कृपा है, प्रभु की ऐसी करुणा है, उनकी ऐसी अलौकिक महिमा है कि उन्होंने अपनी प्राप्ति किसी पराश्रय और परश्रम के अधीन रखी नहीं। पराश्रय और परश्रम सबके पास समान है क्या? बोलो, नहीं है। वो रखी स्वाश्रय हरे आश्रय और विश्राम के साथ। आप प्रभु का आश्रय ले ले और श्रम रहित हो जाए। श्रम रहित होने के लिए आवश्यक कार्य पूरा कर डाले, अनावश्यक कार्य छोड़ दे। अर्थात जो नहीं कर सकते उसे छोड़ दें, जो नहीं करना चाहिए उसे छोड़ दें, और जो कर सकते हैं और जो करना चाहिए उसे पूरा कर दें। जब आवश्यक कार्य पूरा हो जाता है, अनावश्यक कार्य का त्याग हो जाता है, तो विश्राम मिलेगा कि नहीं जी? और जब संसार का संबंध तोड़ देंगे तो हरे आश्रय मिलेगा कि नहीं?
मिलेगा।
ऐसा है तो विश्राम भी आपको मिल सकता है, हरे आश्रय भी आपको मिल सकता है, और विश्राम और हरे आश्रय से ही परमात्मा मिल सकता है। अभी एक बात आपके सामने रख दी कि आप यदि चाहें तो आपको परमात्मा मिल सकता है। अब इस बात में जो आपको गलत बात मालूम आती हो, न समझ आई हो, कोई कठिन बात मालूम होती हो, तो अब इसी संबंध में विचार कर लें। एक बात आज आपके सामने आ गई कि यदि आप चाहें तो आपको परमात्मा मिल सकता है। देखो भैया, अपने करने वाली बात आप किसके द्वारा करना चाहते हैं? जब भूख लगती है, भोजन सामने आता है, तब तो नहीं कहते भाई सामने दिखता भी है ठीक ही मालूम होता, ला खा ले, न खाए कोई और खिलाए ले, तो आप स्वयं खाने लगते। यानी आपके करने वाली बात तो आपको ही करनी पड़ेगी, उसे कर सकते हैं। प्रश्न इस बात पर सोचिए कि जीवन में नहीं उतरता है क्यों? तुम पसंद नहीं करते हो? जीवन उतारने के लिए कोई शारीरिक श्रम था, कोई योग्यता की जरूरत थी, कोई परिस्थिति विशेष की अपेक्षा थी, कोई वस्तु विशेष की अपेक्षा थी, जो आप कहते नहीं उतर सकता, नहीं उतर सकता। अरे आपकी 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 मर्जी की बात थी कि आप परमात्मा को पसंद करते। मान लीजिए आप केवल इतना ही कर लेते कि परमात्मा है और मुझे पसंद है, तो जब अपनी पसंद की चीज नहीं मिलती है तो उसकी स्मृति जगती है कि नहीं जी? उसमें मन लगता है कि नहीं? न मिले तभी तो मन लगता है, उसकी याद में मन डूबा रहता है। तो परमात्मा की याद भी अगर आपको आ जाती तब भी तो आपका मन डूब जाता। देखो संसार की याद में और परमात्मा की याद में बड़ा भारी अंतर है। जैसे आज सवेरे प्रार्थना की गई थी, अब उस माँ बाप के हृदय को, उसकी पत्नी के हृदय को पूछा जाए तो क्या उसे अपने पति की याद नहीं आ रही है? क्या माँ को अपने बेटे की याद नहीं आ रही है? आ रही है ना? लेकिन उस याद में निराशा है क्या? आशा निराशा है। उस आदमी सिवाय अभाव है कि पूर्णता होगी? कभी अभाव ही रहेगा। और ऐसे ही अगर परमात्मा की याद आ जाए तो उसमें निराशा है क्या? आशा अभाव है कि पूर्णता? तो परमात्मा की याद तो आनी चाहिए ना आपको, करनी नहीं चाहिए, आनी चाहिए। कब? जब उसको पसंद करें तब। परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए और उसे अपना मानना चाहिए। परमात्मा कहते ही उसको है जो सभी का अपना है, किसी का है किसी का नहीं है, उसका नाम परमात्मा नहीं है। कभी है और कभी नहीं है, उसका नाम परमात्मा नहीं है। कहीं है और कहीं नहीं है, उसका नाम परमात्मा नहीं है। जो सभी का है, जो सदैव है, जो सर्वत्र है, जो समर्थ है, जो अद्वितीय है, उसका नाम परमात्मा है। ऐसे परमात्मा को अपना मानने में आपको क्या कठिनाई है? ऐसे परमात्मा को पसंद करने में आपको क्या कठिनाई है? आप कहेंगे एक ही कठिनाई है, हम देख तो लें, जैसा सुना वैसा है भी कि नहीं, तो संदेह ही कठिनाई है। गुरु वाणी में संदेह नहीं किया जाता, वेद वाणी में संदेह नहीं किया जाता। देखो अभी लड़के स्कूल में पढ़ने बैठते हैं और साइंस का मास्टर कहता है, लड़कों से पूछा जाए सूरज कितना बड़ा दिखाई देता है, लड़के छोटा दिखाई देता है। अब पढ़ाया क्या जाता है, पृथ्वी से कई लाख गुना बड़ा है। तो लड़के ये पढ़ते हैं बड़ा है कि पढ़ते हैं छोटा है? क्यों पढ़ते हैं, दिखाई नहीं छोटा देता है ये? मास्टर ने कहा ऐसे ही वेदवाणी ने कहा, भक्तवाणी ने कहा, गुरुवाणी ने कहा। अरे भैया तुम कब भटक रहे हो, आनंद का खजाना, आनंद का पुण्य, आनंद का सागर जो परमात्मा है वो तुम्हें मौजूद है, तुमको लेवल दिखता तो ही नहीं। अब लड़के कहते हम नहीं पढ़ेंगे एम ए एन मैन माने आदमी, तो मैं जा बेटा अंग्रेजी याद हो, अगर मास्टर की बात नहीं मानते हो एम ए एन मैन माने आदमी तो अंग्रेजी पढ़ सकते हो क्या जी? तो परमात्मा को पाना चाहते हो तो भक्तवाणी को मानना पड़ेगा कि नहीं? मानने की शक्ति तुम्हें है, क्योंकि तुमने आंख से देखे हुए सूरज को भी बड़ा मान लिया जी? तो गुरु सामने बैठे तो है मौजूद हटे करते तो मैं तो ये एकदम से विरोध करता हूं, चाहे तो अपनी बात मानो चाहे मेरी बात मानो, और किधर तो है नहीं। अगर और किसी मान ना हो तो किसी और के पास चले जाओ, पटो जो संजोग मिला है उससे तीन हो सकता है ना कि आप अपनी भाई, आप तो भाई अपनी बात मानो, हमारी बिल्कुल मत मानो, कोई नुकसान नहीं होगा, बड़ा फायदा होगा आपको, उसका भी कोई फल होगा, या फिर मेरी बात मान लो। अरे गुरु मान के मान लो, मित्र मान के मान लो, चेला मान के मान लो, बेटा मान के मान लो, भिखारी मान, कोई तो भाव संबंध तो जोड़ो। एक दफा हम हिसार में ठहरे हुए थे तो जिन्हें ने कहा मैं आपको गुरु नहीं मानना चाहता, मैंने गुरु नहीं तो चेला बना ली, संबंध तो जोड़ो, फिर तो नेचर बताएगा कौन मानता है कौन नहीं मानता। अरे भाई संबंध तो जोड़ो, अरे सबसे तो अगर तुमको हमसे संबंध जोड़ने में भय लगता है तो फिर और संबंध क्यों जोड़ते हो? सबसे तोड़ो लोग, सत्य में दो ही बातें आई, या तो सबसे तोड़ो या प्रभु से जोड़ो। ऐसा क्या कहना है? तो मैं आपसे ये भी निर्मा रहा था कि जीवन का जो सत्य है, जाना हुआ जो असत्य है, तो जाने हुए असत्य को अस्वीकार करो और सुने हुए सत्य को स्वीकार करो, इतना काम तुम्हारा है, बाकी सब परमात्मा का, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं। लेकिन जाने हुए असत्य को अस्वीकार करना तुम्हारा काम है और सुने हुए सत्य को स्वीकार करना तुम्हारा काम है। अगर आप बड़े भारी तार्किक बन जाए, विचारक बन जाए और कहें हम जाने हुए असत्य को तो अस्वीकार कर सकते हैं पर सुने हुए सत्य को स्वीकार नहीं करें, तब भी कोई बात नहीं, तब भी काम बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा? कि असत्य को अस्वीकार करने से संसार का संबंध टूट जाएगा और संसार के संबंध टूटने से तुम अपने में संतुष्ट हो जाओगे और अपने में संतुष्ट होने से अपने में जो अपना परमात्मा है वो आपको मिल जाए। चाहे दोनों तरफ से उपाय करो चाहे एक तरफ से उपाय करो, तुम स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, असत को अस्वीकार करने में भी स्वतंत्र हो, सत्य को स्वीकार करने में भी स्वतंत्र हो, और दोनों बातों को साथ लेकर चलो उसमें भी स्वतंत्र हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप रोटी खाने में पराधीन भले ही हो पर परमात्मा की प्राप्ति में पराधीन नहीं। जैसा कपड़ा पहनना चाहते हो न मिले हो सकता है, जैसा मकान बनाना चाहते हो न बना सके हो सकता है, और बना हुआ मकान भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा को यदि आप पसंद कर लें तो वो आपको जरूर मिल सकता है। सबसे सुलभ, सबसे सहज, सबसे स्वाभाविक अगर प्राप्ति किसी होती है तो उसका नाम परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, पर तुम पसंद नहीं करते हो, यही कठिनाई आपके सामने है। तुमने अपना नहीं मानते हो, तुम उनकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते हो, तुमने पसंद नहीं करते हो अथवा संसार को नापसंद नहीं करते हो, ये दो कठिनाई है आपके सामने। मिले हुए शरीर को, देखे हुए संसार को नापसंद नहीं करते, सुने हुए परमात्मा को पसंद नहीं करते। अच्छा, किसको नापसंद नहीं करते? जो आपके साथ रह नहीं सकता। किसको नापसंद नहीं करते? जिसके साथ आप रह नहीं सकते। अपनी पसंद की जरा थोड़ा अंदाज लगाइए जनाब भाई साहब, क्या हालत हो गई आपके दिमाग की और दिल की? हमें वो पसंद है जो नहीं है तो लोग कहेंगे पागल हो। अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि मुझे वो पसंद है जो नहीं है तो आप सब कहोगे समझ पागल हो। अरे भले आप नहीं को क्यों पसंद करते हो? और हम कहें हमें वो पसंद है जो है, वो ना पसंद है जो है, एकदम पागल हो गए नालायक है को ना पसंद करते हैं। तो पागलपन नहीं करना चाहिए जीवन में, सही दिमाग से सही दिल से सोचना चाहिए कि जो नहीं है उसको नापसंद करेंगे, जो है उसको हम पसंद करेंगे, जिसके साथ हम नहीं रह सकते उसको नापसंद करेंगे, जो हमारे साथ सदैव रह सकता उसको पसंद करेंगे। कितनी सी बात है। तो जो नहीं रह सकता उसका तो आपको ज्ञान है ही, जो आपके साथ सदैव रहता है सदैव है उसमें आप उसका ज्ञान नहीं है। तो जिसका ज्ञान नहीं है उसमें विश्वास करो, और जिसमें जिसका ज्ञान है उसका ज्ञानपूर्वक उसके ज्ञानपूर्वक उसे संबंध तोड़ो। तो ज्ञान संसार से संबंध तोड़ देता है, विश्वास परमात्मा संबंध जोड़ देता है। ज्ञान और विश्वास का तत्व आपके जीवन में मौजूद है, साधन सामग्री आपके पास मौजूद है। ज्ञान का प्रकाश साधन सामग्री है, विश्वास का तत्व साधन सामग्री है। आप ज्ञान से बुराई रहित होकर संसार का संबंध तोड़ लें, आप विश्वास से प्रभु से संबंध जोड़ लें, सफलता अवश्य भावी। सफलता अवश्य भावी आ गई तो क्या। श्रवण के अंत में शांत होना चाहिए। अब प्रार्थना कर लो, मेरे नाथ। अब तो संबंध जुड़ गया, आपने मुझे कह दिया था, अब बदलना मत इस बात। मेरे नाथ सुधा भाई कर वो समर्थ पति पावनी।